ओम शांति।
ग्रुप नंबर 4, तीनों काल अच्छे से अच्छा होना ही ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री है। अपने को नव जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन वाली आत्माएं अनुभव करते हो, सभी ब्राह्मण आत्माएं हो, तो नए जीवन में आपकी जन्मपत्री बदल गई है या थोड़ी थोड़ी पुरानी ही है? तो ब्राह्मणों की जन्मपत्री क्या है? आदि देवी देवता हो और अभी बीके हो ना पक्के, तो आपकी रोज की जन्मपत्री क्या है? गुरुवार अच्छा है, बुधवार अच्छा नहीं है, क्या कहेंगे? हर दिन अच्छा है, किसी ने कहा। तो बाबा कह रहे हैं तो जन्मपत्री बदल गई ना। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, जो हुआ वह भी अच्छा और जो रहा है, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत 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 अच्छा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छे से अच्छी है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। अपने तकदीर की लकीर देखी है? अच्छी है ना? कितने जन्मों की गारंटी है? 21 या 84 ही जन्म? 84 जन्म में तो विदेशी बन गए, बाबा विदेशियों से मिल रहे होंगे, तो 84 जन्म में तो विदेशी बन गए। तो किसी ने उत्तर दिया सर्विस अर्थ बने हैं, बहुत अच्छा उत्तर दिया। डबल विदेशी इसलिए बने कि विदेश में सेवा हो रही है। आपको भारत सेवाधारी नहीं कहते हैं, विश्व सेवाधारी कहते हैं। कोई भी स्थान नहीं छूटना चाहिए, इसलिए अलग अलग स्थान पर पहुंचे हो। अगर आप लोग अपने देश में नहीं होते तो भारत से कहां तक जा सकते थे? इसीलिए सेवा अर्थ पहुंच गए हैं। ये नशा रहता है तो सेवा करते हो ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है याद और सेवा। याद के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। याद और सेवा ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है और कितनी आवश्यक है, ऐसे ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा नेचुरल और आवश्यक है। बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना दी, भाग्य विधाता को अपना बना लिया, बनाया है ना। सभी क्या कहेंगे? हमारा बाबा, मेरा तो कभी भूलता नहीं है। बाप दादा डबल विदेशियों को देखकर खुश होते हैं कि कितना दूर दूर रहते भी बाप के समीप पहुंच गए। देह से तो दूर हो लेकिन दिल से कितने समीप हो, सदा कहां रहते हो? बाप के दिल तक पर। सबसे महत्व दिल का होता है ना। अगर किसी से प्यार होता है तो कहेंगे दिल में समाये हुए हो। और आप लोग भी जब याद प्यार भेजते हो तो हार्ट्स ही भेजते हो ना, दिल की शेप के वो बनाते हैं। तो समीप रहना अर्थात दिल तख्त नशीन होना। सभी दिल तख्त नशीन है कि कोई बाहों में है और कोई गले में है? दिल को ही दिल तख्त कहा जाता है। जो अभी दिल तख्त नशीन होते हैं वही विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनते हैं। तो डबल विदेशी भी राज्य सिंहासन पर बैठेंगे ना। अच्छा, हिम्मत अच्छी है। हिम्मत का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना है, सदा हिम्मत से आगे उठते रहना। तो ये आज बाबा ने इस ग्रुप से मुलाकात में बताया है। तो टाइटल ही है कि तीनों काल अच्छे से अच्छा होना, यही ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री है। जैसे कि बाबा ने हमारी, जब हमारा जन्म हुआ है, ब्राह्मण बने हैं, तभी बाबा ने हमारी जन्मपत्री खींची हो और उसमें अच्छाई ही अच्छाई भर दी हो। तो बाबा ने यही बताया है कि हमें सदा ये याद रहे कि सिर्फ कहने मात्र नहीं लेकिन वास्तव में जब से हम ब्राह्मण बने तब से कोई ऐसा दिन नहीं जो अच्छा या शुभ ना हो। तो जो बीता वो भी बहुत अच्छा और जो है वो भी बहुत अच्छा और जो आने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। मतलब एक आशा और वो जो एक पॉजिटिव सोच सदा बना रहे। नहीं तो दुनिया में लोग, दुनिया में भी जो कलयुगी ब्राह्मण है उन लोगों का भी इतना संकल्प चलता है कि कौन सा दिन अच्छा है और कौन सा दिन अच्छा नहीं है, कोई काम करने के लिए कोई शुभ दिन आएगा और इतना रहता है उनको। लेकिन बाबा ने बताया जो वास्तविक ब्राह्मण है, बाबा के बच्चे बन गए और जिनके ऊपर सदा वृक्षपति की दशा बैठी हुई है, तो उनके लिए तो सभी कुछ अच्छा है। और क्योंकि हमारा तो कर्म भी जो है वो सेवा है, तो मतलब शुभ काम में तो सभी समय अच्छा है। तो कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि अभी तो हमारा समय अच्छा नहीं है या अभी तो हमारी स्थिति गड़बड़ चल रही है। बाबा ने तो कह दिया कि हमारा सभी समय अच्छे से अच्छा है। और ये सिर्फ कहने मात्र नहीं लेकिन ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छे से अच्छी है ही। फिर बाबा ने दूसरा ये बताया यहाँ पे कि ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा नेचुरल और आवश्यक है। यानी कि याद में रहना भी उतना ही जरूरी है हमारे लिए और सेवा करना भी उतना ही आवश्यक है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये हमारा नेचुरल हो जाए याद और सेवा। तो वैसे भी बाबा ने कहा है याद सेवा भी ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो वो काम जो श्वास है या मतलब वो नेचुरल होता जाए। और क्यों सेवा जरूरी है, तो इससे ही मेरे को चिंतन चला कि जैसे बीज होता है तो वो शुरू में वो कितना लेता है, मतलब धरती से पानी लेगा और पोषक तत्व तो लेगा। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि चक्र तभी पूरा होता है जब वो घूमते घूमते उसी स्थान पर आ जाए कि वो बीज फल बना ले और देने के काम आए। तो वैसे भी मनुष्य जीवन की भी सार्थकता तभी है कि जब हम इस समाज से कुछ लेते हैं, बड़े हुए, सबसे पालना ली, एजुकेशन लिया, सब कुछ किया और एक स्थिति ऐसी आए जब हम कुछ देने के लायक बन जाए। तो बाबा ने तो ब्राह्मण बनते ही शुरू से ही मतलब तो याद हमारा लेने का काम है और सेवा में जो है हमारा देने का हमें मौका मिलता है। दुनिया में भी कहते हैं कि मतलब एक रिसर्च भी हुआ है कि एक टर्म है जॉय ऑफ गिविंग, यानी जो देता है खुशी सबसे ज्यादा उसी को हो सकती है। और सेवा इसी वजह से हमारा श्वास है या आवश्यक है क्योंकि उसी से फिर हमें खुशी मिलेगी। क्योंकि जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमें वो खुशी की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो ये दोनों ही जो बातें हैं वो हमें स्थिति को ऊंचा ले जाने वाली है कि एक तो ये स्मृति की जो आज भी बाबा ने बोला था कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वही हमें मिल गया और अच्छे पे अच्छा समय है। तो उसमें भी जो आज बाबा ने बोला कि मतलब मार भी अच्छी है और लड़ाई होने वाली है वो भी अच्छी है। तो ये सारी बातें जो है स्मृति दिलाई हमें कि हर समय हर स्थिति हमारे लिए अच्छी है। और दूसरी बात भी हमारे लिए अच्छी ये है कि हमारा बाबा तो मेरा बाबा कभी नहीं भूले, तो उसी से फिर हम सेवा करेंगे।
सेवा से और क्या क्या प्राप्ति है,
थोड़ा अनुभव, थोड़ा परिचय
शॉर्ट में पहले वही बता दो।
शांति, शरीर का नाम मानस भाई है और बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और ज्ञान में आए अभी 4 साल हुए हैं और उत्तराखंड में था। पापा का ट्रांसफर होता रहता है, लौकिक जो पिता है वो बैंक में थे तो अलग अलग जगह हम लोग रहते हैं। तो उस समय उत्तराखंड में कटीमा एक जगह है तो वहां पे ज्ञान मिला और उसके बाद में फिर बस तब से ज्ञान में चल रहे हैं।
कोई
खोज ऐसे मतलब संस्था के विषय में कुछ पता नहीं था, ब्रह्मा कुमारी इस नाम से कुछ होता है, लेकिन टीवी पे एक दिन अचानक से शिवानी बहन का प्रोग्राम देखा तो बहुत ज्यादा उससे खींच हुई और नशा भी चढ़ा। फिर यूट्यूब पे देखा और बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए थे, तो जैसे किसी को भूख होती है तो फिर इच्छा होती है कि सब कुछ एक साथ मिल जाए, तो एक एक जैसे कहानी है ना अंडे की, उसको रोज एक अंडा मिलता तो उसको अच्छे से चैन नहीं पड़ता था, तो रोज एक एक एपिसोड कौन देखे। तो दो तीन दिन थे और सब लोग घर से गए हुए थे, मैं अकेला था, तो वो लगातार वो यूट्यूब पे बैठ के दो तीन दिन लगातार वो सारे एपिसोड देख डाले, तो इतना उससे जबरदस्त खींच हुआ। और उसमें बार बार वही बताते हैं कि वो मेडिटेशन सीखना है तो सेंटर पे जाना है, तो ढूंढते ढूंढते ढूंढते, वो शहर नया था मेरे लिए, तो ढूंढते ढूंढते जगह पर सेंटर पे पहुंचे और रोज जाता था और ताला लगा हुआ मिलता था, क्योंकि वहां सेंटर जो है एक भाई ही रहते थे वहां पे, पहले बहने नहीं रहती थी, और उसके बाद में फिर रोज लेकिन जाना चालू रहा। उस दौरान उसी पे नेट पे, बाबा जो कहते हैं ना नेट पे भी तुम लोगों ने डाल रखा है, कुछ दिन पहले ही ये वक्त वाणियों में आ रहा था कि तुमने कंप्यूटर पे भी डाला है और अच्छा है लोग देखेंगे, तो यूट्यूब पे और भी जयंती दीदी जी के और शिवानी बहन जी के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो उस दौरान जब तक सेंटर पे कोई नहीं मिलता था तो रोज जाते थे और कुछ ना कुछ बाबा दिखा देता था, तो उसी से बहुत सारी मतलब जैसे एक ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था। लेकिन जब सेंटर पे गए तो फिर बाबा ने कुछ अनुभूति भी करा दी, तो उससे फिर निश्चय हो गया। उसके बाद फिर ज्यादा समय वहां रहना नहीं हुआ, फिर केरल चले गए और वहां पर अकेले था मैं, और उस दौरान फिर बाबा ने बहुत अच्छा मतलब योग की अनुभूति और बाबा की याद में भोजन बनाना और वो सब बहुत अच्छे अनुभव करे। तो 6 महीना वहां बिल्कुल एकांत में, और उसी समय मौका मिला मतलब बाबा को करीब से जानने का। उसके बाद में फिर दूसरी जगह आए, मेरा झालावाड़ में पोस्टिंग था, वहां पे जॉब था एज अ डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पर फिर सेवा का पार्ट चालू हुआ, तो जो अभी तक कुछ थोड़ा बहुत समझा था वो औरों के साथ शेयर करना और वो सब, तो उससे फिर और ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद फिर बाबा ने यहाँ इधर आए थे, मैं ट्रेनिंग में आता रहता था, जैसे मेडिकल विंग की और इन सब की ट्रेनिंग होती थी, तो मधुबन बाबा से मिलने भी आना और वैसे भी ट्रेनिंग्स वगैरह में मतलब सेवा के कुछ अच्छे मिलते रहे तो आते रहते थे। तो उसी दौरान फिर जो है विहासा हुआ था ज्ञान सरोवर में, और उसमें सर और मैम आए थे वहां पर, तो उसके बाद में वहां पे सर को सुना तो फिर मिले सर से और प्रेरणा मिली यहाँ आने की, बस फिर बाबा ने घर बुला लिया। उनको ऐसे लगता है कि ये अपना पढ़ाई लिखाई में है और चलो अच्छा है मतलब, बाकी उनको ज्ञान से रुचि नहीं है और उनके साथ में रह भी नहीं पाया कि उनकी सेवा ज्यादा करूं, लेकिन उनको ज्ञान में इतना वो नहीं है, लेकिन ठीक है बाबा दूर रखा हुआ है तो निर्विघ्न चला रहा है। हाँ मतलब इतना पता है, लेकिन इस इतना डीप में गए हैं और सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर ज्ञान योग करते हैं ये सब नहीं, उनको ये लगता है हाँ वहाँ डॉक्टरी कर रहा है, थोड़ा पढ़ाई कर रहा है आगे की करियर बनाएगा इस तरीके से। ये उनको इसी वजह से तो परेशान थे कि ये क्या इसको हो रहा है, और मतलब ये लोग क्या अपना इसी में लगे रहते हैं और भोजन वगैरह नहीं करना, शादियों में नहीं जाना, तो ये सब तो उनको गुस्सा आता है इस बात पे, और इसी पे जब भी घर जाओ तो थोड़ा होता है अंदर, लेकिन उनको ये है कि ठीक है मतलब अभी उन्होंने ही छुट्टी दी, मुझे लग रहा था जब मैंने सोचा यहाँ मधुबन आने के लिए तो बिल्कुल मना करेंगे, कहेंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगा हमारे पास से, लेकिन फिर उनका कुछ संकट, बाबा ने उनकी बुद्धि ऐसी फेरी, उन्होंने कहा हाँ पढ़ाई करने जा रहे हो तो भले जाओ, ऐसे करके उन्होंने भी छुट्टी दे दिया, तो सहज हो गया यहाँ पे आना। ये तो आपकी बार घर अभी किसी की कजिन की शादी थी, गए घर पे तो सभी व्हाइट कपड़े देख के, और शादी के दौरान भी हम व्हाइट कपड़े पहनेंगे। अरे तो वो देख के ऐसे सोचने लगे ये क्या है, तुमने क्या कर रखा है। तो ये सब तो समझते हैं कि मतलब बहुत पक्के हैं धारणाओं में, और ये भी लगता है उनको कि मैं यही कहते हैं वो कि अपनी जिद का पक्का है, मतलब जो ठान लेगा इसको, जो समझ में आ जाएगा वही करेगा। तो और अब उनको ज्ञान सुना नहीं सकते, प्रॉब्लम ये नहीं, तो बोलते हैं कि मदर तो खासतौर पर यही बोलते हैं कि बस तुम रहने दो तुम्हारा ज्ञान अपने पास है, बिकॉज वो पेरेंट्स हैं, उनको हम ज्ञान सुना नहीं सकते। तो
शादी के बारे में क्या,
कुछ भी नहीं, वो तो
है, पेंडिंग है।
वो समझने वाली बात है, वो भी समझते हैं कि वो बात तो लोगों को बचपन से लगता है कि थोड़ा मतलब धार्मिक वो था, और खोज भी थी एक्चुअली बचपन से जो है। मैं साउथ में जब था, एजुकेशन चल रही थी मेडिकल कॉलेज में, तमिलनाडु में था, तो वहां बहुत सारी संस्थाएं, मतलब काफी सारे जो गुरु स्वामी विवेकानंद का और ओशो हैं और अरबिंदो हैं और गांधी जी का, विनोबा का, मतलब काफी सारे संस्थाओं में मैं जा चुका था, और थोड़ा उनसे जुड़ने की कोशिश, उनका लिटरेचर का अध्ययन ये सब किया था। तो खोज तो कहीं ना कहीं चालू थी, लेकिन और वेस्टर्न चीजों को, अब आज जब बाबा ने बोला कि जो आपकी बाबा जन्मपत्री बता रहे, तो एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों में भी काफी मेरे को वो था रुचि, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वगैरह का भी मतलब काफी अध्ययन किया हुआ था। वो सब पता नहीं क्यों कर रहा था, लोगों को लगता था मेडिकल कॉलेज में ये सब काम कर रहे हैं तो शायद वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे भी नहीं पता था कि मतलब इस तरीके से भगवान की खोज चल रही है, लेकिन जैसे ही 7 दिन का जो कोर्स हुआ, और उसमें फिर किसी ने कराया नहीं था कोर्स एक्चुअली, वो थोड़ा लेकिन पढ़ने को मिला, और वो जो चित्र देखे उनसे ऐसे कि स्मृति पटल खुलता चला गया। खासतौर पे जो मैं गीता बहुत पढ़ता था, और गीता के अलग अलग लोगों ने जो गीता पे कमेंट्रीज दिए हुए हैं, विनोबा का गीता प्रवचन है, और मतलब अंग्रेजी में हिंदी में जो अलग अलग गीता का है, तो उसमें फिर जब मैंने वो जो गीता ज्ञान वाला जो चित्र है कि कृष्ण ने दिया, या वो जो कोर्स की पुस्तक का जो अंदर वाला लास्ट का पेज जो अंदर का है, उसपे जो गीता वाला चित्र है, उसको देखकर इतना जैसे कि एक बात हिट करी कि यही सत्य बात है कि गीता ज्ञान इस समय दिया गया है। फिर जगदीश भाई जी की वो पुस्तक भी बाद में पढ़ने को मिली, गीता और महाभारत का सत्य रहस्य, तो उससे इतना निश्चय बैठा, और जैसे नशा, तो उसे एक चित्र नहीं जैसे बुद्धि का कपाट खोलती है।
विज्ञान और अध्यात्म के बारे में क्या कहना
सर? उसके लिए तो बाद में पढ़ने को मिला मेरे को एटर्नल वर्ल्ड रामा जो पार्ट 2 है, तो जिसमें पूरा 5000 वर्ष का जो सिद्ध किया हुआ है ज्योतिष भाई जी ने, वो मेरे को बाद में पढ़ने को मिला। मैं केरल में था एक्चुअली, जब मेरे साथ के लोग थे, हम लोग पीजी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब उन लोगों को जैसे ही ज्ञान आपको मिलेगा वैसे ही बहुत नशा चढ़ेगा और इच्छा होगी, सबको पता है। अब मैं उन लोगों से कुछ शेयर थोड़ा साइंटिफिक तरीके से ही मैं समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वो लोग हंसी उड़ाते थे, मानते नहीं थे, और कहते थे उसको क्या हो गया, अभी हमारे साथ ना पिक्चर देखने जाएगा, ना हमारे साथ कहीं होटल में जाएगा, मतलब बहुत अगेंस्ट हो गए थे कि ये इसको ये क्या साधु बाबा बन गए। तो एंड रियल में मतलब वो लोग ऐसे मजाक भी बनाते हैं फिर, तो मेरे को लगता था कैसे इन लोगों को, ये साइंस वाले बंदे हैं तो ये लोग तो ऐसे समझेंगे नहीं, तो साइंस का बैकग्राउंड से ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं, मम्मा का दिन आने वाला था एक्चुअली, 2011 की बात है, मम्मा का दिन जस्ट आने वाला था, और उससे एक वीक पहले, और मैं कमरे में अकेले रहता था और लगातार बस मेडिटेशन करता रहता था, तो उस दौरान बाबा कुछ मतलब टचिंग्स देता था, तो उसमें एक पुस्तक है छोटी सी, वॉयजर्स करके अंग्रेजी में एक कहानी लिखी हुई है, रॉबर्ट शुबोव करके जर्मनी के कोई भाई हैं, एंड एक्चुअली वो कहानी मैंने नहीं पढ़ी थी उस टाइम तक, लेकिन वो पूरा मेरे को वही कहानी जैसे टच हुई, और फिर मैंने को अमृत वेला में लिखने लग गया। और जब मैंने उसको लिखा, और मम्मा के दिन मेरे को किसी याहू ग्रुप्स में किसी से वो फॉरवर्ड, सेम जो स्टोरी मैं लिख रहा था वो स्टोरी, वॉयजर स्टोरी वो मेरे पास में है, मैंने दोनों का मिलान किया तो दोनों सेम टू सेम, मतलब जो इधर बाबा मेरे को कर रहे हैं, 30 साल पहले वही किसी और ने लिखी हुई है वो कहानी, एंड इट इज ज्ञान है लेकिन एक साइंस फिक्शन यानी विज्ञान की भाषा में वो कहानी आत्मा की जो जर्नी है उसको वर्णित किया हुआ है। तो वो जब कहानी पढ़ी मेरे को इतना नशा हुआ और मैंने फिर वो जेरोक्स कर करके सबको बांटना शुरू कर दिया कि लो पढ़ो एक अच्छी स्टोरी है करके। उन लोगों को लग रहा है ये क्या कर रहा है ये सब। खैर उन लोगों को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन बाबा को मेरे को कुछ गिफ्ट देना था तो बाबा उस तरीके से दिया। तो वो एक शुरुआत थी लेकिन उसके बाद से फिर सदा ही मतलब विज्ञान और मेरी मतलब ज्ञान जो अध्यात्म है वो कैसे कनेक्टेड है तो वो मतलब खोज चालू थी। अभी जो मूवी भी बनी वो पोलारिस जो मूवी बनी मतलब दिल में तमन्ना थी बाबा इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए और भी जगह से हम एक्चुअली इंटरनेट पे कुछ भी पढ़ते हैं तो वो सारी चीजों का कनेक्शन हमको समझ में आता है लेकिन पहली बार उस चीज को थोड़ा एक उस रूप में जो है भले ही थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो लेकिन इस विषय में चिंतन की आवश्यकता है तो वो पोलारिस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब कोशिश करी है उसको एक्सप्लेन करने की। तो
डॉक्टर माला शर्मा इनको अगर कहा जाए विज्ञान के बारे में बोले तो ऐसी ऐसी बातें हम सबको बता देंगे कि हमारे सर के ऊपर से चली जाए। इतना इनका गहन अध्ययन है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का। उन्होंने बहुत 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 मतलब पढ़ के रखा है उसके बारे में साइंस के बारे में। अभी तो बहुत थोड़ा बताया पर जब ये हमारे शाम की क्लास में बोलना चालू करते हैं तो बहुत सारी बातें तो हमको समझ में नहीं आती इतनी ऊंची बातें होती है। तो आज पापा ने कहा ब्राह्मणों के साथ जो भी होता है वो अच्छा हर बात में कल्याण है। ब्राह्मण अर्थात हर बात में कल्याण ही कल्याण। यज्ञ में आज तक जो कुछ हुआ उस सब में कल्याण था या नहीं था? बाद यज्ञ की शुरुआत में ही निंदा हुई यज्ञ की शुरुआत में ही ग्लानि हुई उसमें भी कितना कल्याण था। यज्ञ की शुरुआत में कितनों को विरोध हुआ पर उस विरोध के कारण आत्माएं कितनी पक्की और शक्तिशाली हो गई। यज्ञ चालू हुआ विरोध से उपहास से फिर धीरे धीरे यज्ञ संपन्न था फिर धीरे धीरे दरिद्रता की का जो एक पार्ट है बेगरी पार्ट जो चालू हुआ उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण था। उसमें क्या कल्याण था? जो पक्के थे वो रह गए और जो कच्चे थे वो पलायन कर गए। तो उसमें भी कितना कल्याण समाया हुआ था। तो हमारे जीवन में जो कुछ होता है चाहे यज्ञ में जो कुछ होता है या जीवन में जो कुछ होता है परिस्थितियां बहुत सारी आती है उसमें क्या कल्याण है? हमें पक्का बनाती है शक्तिशाली बनाती है क्लास आगे बढ़ता है विवेक को रिफाइंड कर देती है अनुभवी बना देती है। हम वो नहीं रहते जो पहले थे। तो जो भी परिस्थितियां आ रही है समस्या आ रहे विघ्न आ रहे हैं जिस वातावरण में हम रहते हैं जिस परिस्थिति में हम है हर बात में कल्याण समाया हुआ है। केवल उस कल्याण को हमें ढूंढना है। हम अपनी छोटी नजर से देखते हैं ट्यूबुलर विजन तो हमें बहुत समझ में नहीं आता है पर हम अगर बृहद बहुत ही बेहद की दृष्टि से देखें तो हमें पता चलेगा ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। ड्रामा न्यायकारी है ड्रामा कल्याणकारी है। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण है नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा है। तो वो कल्याण को देखने की दृष्टि हमें अपने अंदर निर्माण करनी पड़ेगी कि ये जो परिस्थिति आई इसने मुझे क्या सिखाया ये जो हुआ जीवन में इसने मुझे क्या सिखाया। कई ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन में वो पहले बहुत संपन्न थे फिर अचानक कुछ हो गया दिवाला निकल गया और उसके बाद ज्ञान में है उसके पीछे भी वो कल्याण समाया था। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में किसी की मृत्यु हो गई इतने दुख में डूब गए और उस दुख के समय उन्हें भगवान का ज्ञान मिल गया। एक कहानी है कि एक गुजरात की एक बहन थी कन्या थी जो कि बहुत मतलब बहुत ही अच्छी थी। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था वो सेंटर पे सेवाएं भी बहुत करती थी रहती थी घर पे परंतु सेंटर पे सेवा बहुत करती थी मुरली पढ़ती थी और मतलब जिसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न इस तरह की एक कन्या थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक वो ऐसे जा रही है ट्रेन की पटरी थी और ट्रेन आई और वो खत्म हो गई। तो उसके लिए फिर संदेश बुलाया गया था कि भाई ऐसी आत्मा का क्या पाप क्या दोष कि एकदम ट्रेन के नीचे एक सेकंड में खत्म हो गई, क्योंकि इतनी उसमें इतने सब कुछ अच्छा था। तो बाबा ने संदेश में बहुत अच्छी बात कही, बाबा ने कहा कि बाप को बच्ची से इतना प्यार है कि अब तक के उसके जो भी विकर्म थे वो बाबा ने एक सेकंड में नष्ट कर दिए। अभी उसका जो दूसरा जन्म होगा वो भी किसी ज्ञानी के ही परिवार में होगा। तो जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो मृत्यु है चाहे वो बीमारी है, वो तो कल्याण ही, हर बात में कल्याण है। चाहे हमें बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, बीमारी आने के बाद में बहुत कुछ हम सीख जाते हैं, बहुत कुछ। बीमारी आकर हमें क्या कुछ सिखा के नहीं चली जाती है। तो बीमारी, मृत्यु, परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं, जो कुछ हलचल होती है, वो सब 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 हमें एक पाठ पढ़ाने के लिए आती है। केवल हमें वो पाठ को पढ़ना है, बस। हम वहीं चुक जाते हैं, हम ये भूल ही जाते हैं उस समय कि ये पेपर आया है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में जिन्होंने एडमिशन ली है उनका पेपर कभी भी और किसी भी वक्त आ सकता है। आधी रात को भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और वहां पर ही पास होना है। ये विश्वविद्यालय का पेपर कोई बैठ के कोई एग्जामिनेशन हॉल में लिखना नहीं है, ये पूरा दुनिया ही एग्जामिनेशन हॉल है। और एनी टाइम कभी भी पेपर, अभी भी इस समय पेपर आ सकता है, कभी भी भूकंप आ सकता है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसे आउट ऑफ सिलेबस के पेपर्स आ सकते हैं। तो ये दृष्टि हमें बनाए रखनी है पॉजिटिव, जिसको विधायक दृष्टि कहते हैं, कि हर चीज में कल्याण है। बाबा ने दूसरी बात जो कही, याद और सेवा ऐसी नेचुरल हो जाए जैसे कि श्वास। हमें पता नहीं श्वास आ रही है जा रही है। हम जो कुछ कर्म करें, हर कर्म श्रेष्ठ हो, जो कुछ कर्म करें हर कर्म में कल्याण हो। ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कितने हजारों का कल्याण हो रहा है और हमें पता ही नहीं, उसकी खबर भी नहीं। तो हम जो कुछ कर्म करें वो हर कर्म श्रेष्ठ हो। तो वैसे ही याद भी निरंतर याद, उसी की याद में जैसे डूबे हुए, जैसे लव में डूबे हुए। बाबा ने कभी मुरली में कहा है 83 के कि लव लक के लॉक को खोलने की चाबी है। बहुत सुंदर महावाक्य है, लव लक के लॉक को खोलने की चाबी है। ना सुंदर महावाक्य है। और बाबा ने कभी, तो एक मुरली मुझे बहुत याद आती है, ये है 13/3/47 की जो मुरली है उसमें एक बहुत सुंदर बाबा ने बात कही है कि ये आशुक और माशुक का जो मिलन है, ये मिलन कैसा है, ये मिलन ये महफिल है, ये है एक सागर का किनारा। कहाँ होता है मिलन उसके बारे में बाबा कह रहे हैं, ये सागर के किनारे में भी होता है, ये बीच पे होता है, ये एक वंडरफुल प्राइवेट बीच है। बीच मतलब वो जो बीच होती है ना समुद्र के किनारे, ये एक वंडरफुल प्राइवेट बीच है जो हजारों के बीच में प्राइवेट है। ये जो तुम्हारा मिलन है ये एक वंडरफुल प्राइवेट बीच पे होती है, ऐसी बीच जो हजारों के बीच में, ये बीच प्राइवेट है। तो ये तुम्हारा वंडरफुल प्राइवेट मिलन है तुम्हारे माशुक के साथ।
प्राइवेट एंड पब्लिक,
प्राइवेट एंड पब्लिक। बाबा ऐसे हमें बहुत सारी ज्ञान की जो बातें हैं ना, वो ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, पर हम केवल पढ़ते हैं और पढ़ने से वो विस्मृत हो जाती है, याद नहीं रहती। जब तक जिस चीज का चिंतन नहीं किया जाए, बुद्धि को रोक के वहां रुकाओ उसको, तो ही वो याद रहेगा, तो ही वो स्वरूप में आएगा, तो ही हमको विस्मृत नहीं होगा। नहीं तो हम क्या करते, मुरली हाथ में आई पड़ी, बहुत सुंदर मुरली है, हमको बहुत अच्छे लगे कुछ कुछ महावाक्य, पर हमने अपनी बुद्धि को वहां रुकाया नहीं। आंखों को वहीं टिका दो, उस वाक्य को वहां से निकालो, एक्सट्रैक्ट अलग से निकालो, अलग रखो और उस पर पूरा फोकस कर दो, और फोकस करने के बाद ही वो हमारे अंदर चली जाती है फिर। नहीं तो हमने हजारों मुरलियां सुनी है परंतु वो कहाँ है, पता नहीं कहाँ, ना मालूम, उड़कर कहीं चले जाती है पंख लगाकर। तो हमें ऐसे कुछ कुछ महावाक्य है कि जिस पर हमें अपनी बुद्धि को फोकस करना है। तो ज्ञान का चिंतन होते रहे तो ज्ञान विस्मृत नहीं होगा, अन्यथा ज्ञान का चिंतन अगर नहीं है तो ज्ञान तुरंत भूल जाता है। मुरली पढ़ी, पढ़ाई मुरली, ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, पर याद कुछ भी नहीं है, बुद्धि में कुछ नहीं है। डायरी में सारा लिखा हुआ है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स, कोई बोले बताओ तो हम पढ़ के सुना सकते हैं, कुछ भी हो जाएंगे परंतु वो विस्मृत हो जाता है। तो ज्ञान विस्मृत ना हो इसकी विधि है चिंतन, उसके ऊपर रोको, सोचो, इमेजिन, विजुअलाइज करो उसको, मन की आंखों से देखना हर चीज को। इन आंखों से देखने से ज्यादा मन की आंख से देखना 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। कोई भी चीज को सोचना, विजुअलाइजेशन करना, इमेजिन करना कि बाबा ने ये बात कही है भाई, लव लव लक के लॉक को खोलनी चाहिए, इस पे हमने थोड़ा बुद्धि को एकाग्र किया, उसका रस लिया और फिर धीरे धीरे वो बुद्धि के पटल में जैसे छप जाती है और फिर उसका आनंद आता है, अलग ज्ञानानंद। अच्छा, ओम शांति। कल मंजू है लास्ट ग्रुप, ना ना हर बार अच्छा है ब्राह्मणों के लिए, हर बार, हर दिन उत्सव है, हर दिन उत्सव, हर दिन दिवाली। महाराष्ट्र में मराठी में कहा, वो एक संत कहते हैं, तुका मने आम्हा नित्य दीपावली, हर दिन दिवाली है हमें, हर दिन। हाँ,
हर टाइम
ओम शांति। लास्ट ग्रुप, पांचवा।